ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ آیات میں بھی یہود و نصارہ کے غلط عقائد کی قرآن کریم نے اصلاح کی کوشش کی. اس آیت میں بھی ان کا ایک غلط عقیدہ، جس کا پہلے بھی ذکر گزر چکا، کہ حضرت ابراہیم کو اپنے دین کا پیروکار سمجھنا، ان کو بھی یہودی سمجھنا، ان کو بھی اپنے ساتھ منسوب کرنا تاکہ ان کے دین میں وزن پیدا ہو، یہ مسلمانوں کو نیچا دکھا سکیں کہ دیکھیں اتنی بہت بڑی شخصیت، قہرمان توحید جن کو کہا جاتا ہے، کہا کہ وہ بت شکن ہستی حضرت ابراہیم، وہ بھی ہماری طرف ہے، ہمارے دین اور ہمارے مکتب کی طرف ہے، لہذا ہمارا پلڑا بھاری ہے، ہمارے ہاں بڑی شخصیات ہیں. البتہ اس آیت کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصارہ کا بھی اسی قسم کا عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ ہماری طرف ہیں، کیونکہ ہر گروہ کی کوشش تھی کہ ان کو اپنے ساتھ منسلک کیا جائے. لیکن اس آیت نے وسعت دی ہے، فقط حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے جن کو اہل کتاب کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی. اس آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 140 میں فرمایا، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ یقیناً ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور ان کے جو اولاد تھی 12 قبیلے، ان میں جو پیغمبر آئے، جو 12 قبیلوں کے تھے جن کو اسباط کے نام سے، اولاد حضرت یعقوب جو شمار ہوتی ہے، کیا تم کہتے ہو کہ یہ سارے کانو ہودن او نصارا، کہ یہ سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ یعنی یہ ان کا واقعاً عقیدہ تھا. آپ دیکھیں ان میں سے حضرت ابراہیم، دیکھیں یہودیوں کے بارے میں ایک جو ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں گزرا تھا، حضرت یعقوب کا ایک بیٹا تھا یہودہ یا یہوذا، اس کی جو آگے نسل چلی اس کو ان کو کہا جاتا ہے یہودی. اسی طرح جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں ان کو کہا جاتا ہے نصارہ، لیکن حضرت ابراہیم وہ تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یہ تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور حضرت اسماعیل تو ایک الگ علاقے میں، ان کی پوری الگ تاریخ ہے جن کا ان سے رابطہ ہی نہیں رہا، یہ تو ایک بلکہ ان کی دشمنی رہی ہے جو بنی اسحاق تھے ان کی، بنی اسماعیل اس کو تو قبول نہیں کرتے تھے. اسی طرح اسباط میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ जो यहूदा या जो उसकी औलाद, वो भी एक हिस्सा मुमकिन है। अगर आप निस्बत देना चाहें तो वहाँ एक निस्बत आप दे सकते हैं, वगरना बाकी अंबिया वो कैसे आप उसको साबित कर सकते हैं कि वो यहूदी थे या वो नसरानी थे। लिहाजा उनकी इस बात को रद्द करते हुए फरमाया, कुल अअन्तुम अअलमु अमिल्ला, कह दीजिए ऐ मेरे रसूल, कह दीजिए अअन्तुम अअलमु अमिल्ला, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या मेरा अल्लाह। यानी उनको समझाया जा रहा है कि खुदावंद आलम इस बात को बेहतर जानता है, बेहतर जानते। ये इजमाली जवाब है, इजमाली जवाब है, इसको खोला नहीं है, लेकिन इससे समझाया जा रहा है कि तुम इस बात का इल्म नहीं है, यानी वो यहूदी और नसरानी नहीं थे। अलबत्त हज़रत इब्राहीम के बारे में सूरह आले इमरान में वाज़ तौर पे जवाब दिया कि जब ये कहते थे कि वो यहूदी थे, नसरानी कहते थे, नसरानी थे या ईसाई थे, उनको जवाब दिया गया कि देखो तौरात और इंजील उनके बाद नाजिल हुई हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि हज़रत इब्राहिम यहूदी थे या नसरानी, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद नाजिल हुई हैं, लिहाजा वो यहूदी नहीं हो सकते, ईसाई नहीं हो सकते। फिर इनको मुतवज्जे करते हुए, मन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो छुपाए गवाही को। देखें गुज़श्ता आयात में जो मसाजिद से रोकता है कि उसमें अल्लाह का जिक्र ना हो, उसको कहा गया था कि यह बहुत बड़ा जालिम है। एक और फ़र्द जिसका तारुफ यहाँ पे परवरदगार ने करवाया, वो कौन है बहुत बड़ा जालिम, मिम्मन कतम शहादतन इंदहू, जिसके पास एक शहादत है, गवाही है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, असल खुदा के यहाँ अल्लाह की तरफ से उसके पास एक गवाही को सुपुर्द किया गया, उसको कहा गया कि आपने गवाही देनी है, आपने शहादत देनी है। जैसा कि इंसान एक देख रहा है, इंसान एक जगह पे, एक इंसान पे जुल्म हुआ है या कत्ल हुआ है, तो ये इंसान के पास एक शहादत है। अब इसका ये हक बनता है कि ये जब इसको बुलाया जाए तो ये वहाँ जाके शहादत दे, गवाही दे। इनके पास शहादत थी रसूलुल्लाह के बारे में, जो तौरात में बातें थीं, जो इंजील में थीं, ये इनके पास शहादत थी, गवाही थी। जब रसूलुल्लाह की बेसत का ऐलान हुआ, अब इनका वजीफ़ा और इनकी ज़िम्मेदारी क्या थी कि उसकी गवाही आके दें, कहें कि वाकई हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना, हमने तौरात में पढ़ा, हमने इंजील में पढ़ा। लेकिन जो इसको छुपा देता है, कितमान करता है, वो बहुत बड़ा जालिम है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उस चीज़ से कि जो तुम अंजाम देते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर उसका जिक्र नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, आप जो छुपा रहे हैं उसका किसी को पता नहीं है। आप कहेंगे हमारी किताबों में हमने तो किसी के सामने उसका जिक्र नहीं किया, परवरदिगार को तो इल्म है जो तुम छुपा रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो। फिर आखिरी आयत में, जो पहले पारे की आखिरी आयत है, अलबत्ता बिल्कुल इसी आयत का पहले सफ़े पे भी वहाँ पे गुज़र चुका है इसका जिक्र, अब यहाँ 141 नंबर जो पहले पारे की आखिरी आयत है, इसमें फिर उसी को रिपीट किया, तिलका उम्मतुन कद खलत, ये ऐसी उम्मत थी, ऐसा ग्रोह था जो गुज़र चुकी, उनके आमाल जो पहले वाले अफराद थे वो गुजर चुके हैं। लहा माँ का सबक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जोर देते थे, फोकस करते थे अपने बुज़ुर्गों पे, उनके कारनामों पे, लिहाजा कुरान करीम में जो शिद्दत के साथ गलत तसव्वुर लोगों में मौजूद है, उसको फिर उसी शिद्दत के साथ मुख्तलिफ आयात में उससे रोका जाता है, या उनको डांटा जाता है, या सही तसव्वुर को बताया जाता है। लिहाजा फिर यहाँ पे तकरार किया, तिलका उम्मत उन कद खलत, वह एक ऐसी उम्मत ही, ऐसा ग्रोह था जो गुजर चुका। लहा माँ का सबक, उनके लिए है जो उन्होंने कमाई की, जो उन्होंने अंजाम दिए अमाल। वलकुम माँ का सब तुम, और तुम्हारे लिए है जो तुम अंजाम दोगे। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा जो वो अंजाम देते थे। लिहाजा हमें भी इस से दर्स लेना चाहिए। हम मामूलन आज का जो मुआशरा है, हम गुज़श्ता किरदारों के बारे में हम बहस करते रहते हैं, खुसूसन उनके आमाल के बारे में, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। हमें अपने आप को देखना है कि हमने क्या करना है, हमने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया है। और उन गुज़श्ता जो बुज़ुर्गान हैं उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी के उन्हीं पहलुओं का तذکرہ होना चाहिए जो आज हमारे लिए मुफीद हैं। लिहाजा बाज़ उलमा बहुत खूबसूरत नुक्ता बयान करते हैं कि हमें उन चीज़ों को बयान करना चाहिए, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों का मुताला करना चाहिए जो या हमारी दुनिया के लिए मुफीद हैं या हमारी आखरत के लिए, जिनका ना हमें दुनिया में कोई फ़ायदा है ना आखरत में उसके बारे में सवाल होगा, उनको हमें बहस करने से और उनको उन पे मुजादला करना, उन पे मुनाज़रा करना, उन पे फजूल गुफ्तगुएं करने से हमें बचना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।